नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, एक ऐसा क्षेत्र जो भारत का आर्थिक आधार स्तंभ है। ये वो क्षेत्र है जो हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी करता है, और जो चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो एक तरह से हमारा एंड रिजल्ट है, एंड प्रोडक्ट है। लेकिन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में लोग इतना बिजी रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल, उनका रूटीन इतना डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं कि उफ, बहुत हो गया बिजनेस बिजनेस बिजनेस, और कहीं ना कहीं वो खुद से कट जाते हैं, खुद से दूर हो जाते हैं, फैमिली लाइफ से दूर हो जाते हैं। तो कैसे उसको सस्टेन करें, बैलेंस करें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज की बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय गीता दीदी जी। आपका स्टूडियो में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत है।
थैंक्स।
आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशनशिप्स को लेकर के है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में जब बात करते हैं हम, तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पहले मुझसे शुरू होते हैं। तो सबसे पहले मेरा खुद के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए?
जैसे आपने बताया था पिछली बार भी कि हम इतने ओवर बिजी हो गए हैं बिजनेस में कि हम खुद को भूल ही गए।
जी,
खुद से कट हो गए हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भी नहीं जानते हैं। तो एक तो हमारे पास सबसे पहले ये ज्ञान होना जरूरी है कि हमारा रियल सेल्फ क्या है। तो वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पहले हो
जी,
कि भाई हम केवल शरीर नहीं है। कहते हैं ना कि भाई ह्यूमन बीइंग विथ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ये रॉन्ग है। हम स्पिरिचुअल बीइंग है ह्यूमन एक्सपीरियंस।
बिल्कुल।
तो जब हम अपने आंतरिक अविनाशी आध्यात्मिक चैतन्य स्वरूप को जान लेते हैं, तो हमें खुद के इस आंतरिक स्वरूप के साथ जुड़ना, उस स्मृति में रहना, उस रियलाइजेशन में रहना, वो बहुत जरूरी है। अब आज की आपाधापी और बिजनेस की दौड़ा दौड़ में हमें इसका ज्ञान भी नहीं है। हम धर्म के नाम पर कुछ क्रियाकांड कर लेते हैं और हमारी भावना संतुष्ट हो जाती है कि हम धार्मिक हैं, परंतु खुद का, खुद के स्वरूप से जो अपने मन बुद्धि का जुड़ना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है।
बिल्कुल।
कि कभी हम शांति से खुद के साथ बैठे, स्वचिंतन करें, स्वयं को देखें। आज चेहरे को तो बार बार आईने में देखते हैं और ठीक करते रहते हैं।
बिल्कुल।
पर कहते हैं ना कि जीवन भर एक ही भूल हम करते रहे कि धूल चेहरे पर थी और आईना ही साफ करते रहे। तो इसी प्रकार हम शरीर को देखते हैं, शरीर को ठीक करते रहते हैं, पर जो हमारा आंतरिक मन है, हमारी मनोस्थिति है, हमारी बुद्धि की जो स्टेटस है, हमें उनके लिए भी तो कुछ करना है। तो वो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि मुझे मेरे अपने आंतरिक स्वरूप में, आत्मस्थिति में मुझे क्या परिवर्तन करने की या क्या विकास करने की आवश्यकता है। हमारा अपना आंतरिक स्वरूप हमें कई बार राइट डिसीजन देता है, हमें कहता है, पर हम साइलेंस से अपने आप को सुनते नहीं हैं, अपने आप को हम सिखा नहीं पाते हैं। दूसरे कोई हमें कहते हैं कि सेठ जी आप बहुत गुस्सा करते हैं, आपने ये चिढ़ करके बोला, ये ठीक नहीं है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है।
जी,
दूसरे कहते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, और हम खुद खुद को सुनते नहीं, देखते नहीं और खुद को सिखाते नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि सुबह शाम कुछ क्षण आप खुद के साथ बैठिए, आपकी अपॉइंटमेंट डायरी में आपका अपना भी नाम हो कि मुझे खुद के साथ भी बैठना।
वेरी गुड। बहुत ही अच्छा कहा आपने कि मेरी अपॉइंटमेंट डायरी में सबसे पहले मेरा खुद से अपॉइंटमेंट होना बहुत जरूरी है। और फिर जैसे हमने फर्स्ट तो अपनी बात की, फिर जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स डायरेक्ट उन लोगों से जुड़े होते हैं जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, या लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, अक्सर करके इनफैक्ट मैंने खुद देखा है कि उनका जो पॉलिसी होता है काम निकलवाना है, उन्हें ये लगता है कि कैसे भी करके इनसे काम निकलवाओ, चाहे उनको आप डोमिनेट करो, गुस्सा करो, प्रेशर बनाओ, दबाव बनाओ, कह देते हैं कि आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी अपनाना ठीक है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए?
जिनके साथ मिलकर और उनके सहयोग से ही हम सफल हो रहे हैं
जी,
अगर वो हमारे पास काम नहीं करेंगे तो हमें सफलता मिलने वाली नहीं है, हम एक अकेले तो हैंडीकैप्ड हो जाएंगे। हमें इन सबके सहयोग की आवश्यकता है, ये महत्वपूर्ण है। अब तक हर इंडस्ट्री और बिजनेस में ये समझा जाता था कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हो, हमारे मशीन्स एकदम रिफाइन हो, हमारा मटेरियल क्वालिटी हो, ये सब बातों पर ध्यान दिया जाता है, पर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल एसेट जो है वो तो वो है जो हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे वैल्यूएबल एसेट है। अगर हम उनके साथ एक मानवता का दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, हम वो मशीन नहीं है जो सिर्फ काम कराना है, पर हमें उनको समझना है, प्यार भी रखना है, शुभ भावना भी रखनी है, और उनके साथ एडजस्ट होके हमें कारोबार करना है। क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज है, मान लो आपके पास 4 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, 1000 है, वो वैरायटी पर्सनालिटी वाले
जी।
आपने देखा होगा कि कोई कारण से आप 5 अपने कर्मचारियों को डांट देते हैं, पर 5 का रेस्पोंड एक सरीखा नहीं होता
जी।
क्योंकि उनकी इनर पर्सनालिटी डिफरेंट है। जो नेगेटिव होगा वो रिएक्ट करेगा, कहीं न्यूट्रल स्टेट में होते हैं उनको कोई असर नहीं होती, जो पॉजिटिव होगा वो अपने में सुधार भी करेगा, आपको समझेगा भी। तो जब हमारे साथियों की भी वैरायटी पर्सनालिटी है तो हम एक ही लकड़ी से सबको तो नहीं चला सकते।
जी 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 जी।
और दूसरा कि वो भी आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग है, हमें उनके वेलफेयर का भी सोचना है।
लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चीजें इग्नोर कर देते हैं, हमें बस ये लगता है कि मेरे जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं मुझे वो हासिल करने हैं, और मुझे अपनी कंपनीज को बहुत अच्छा टर्नओवर जो है मैंने जो डिसाइड किया हुआ है मुझे वहां तक उसको लेकर जाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं।
आपका टारगेट है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हम फोर्स से तो नहीं करा सकते। हमें अपने साथियों को वेल इन्फॉर्म करके हमें उनको मेंटली भी तो प्रिपेयर करना है ना, और उनकी अपनी भी लाइफ है, उनके अपने भी फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो वो भी हमें समझना है। अगर आज एक लेबर के साथ आप मिसबिहेव करते हैं, और जो समय पर हमें दया करनी चाहिए या एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा टॉलरेट कर लेना चाहिए, वो नहीं करते हैं और रिएक्ट करके उसको निकाल भी देते हैं, तो वो दूसरे 10 लेबर को बिगाड़ेगा कि तुम वहाँ काम करने नहीं जाना, वो सेट ठीक नहीं है।
बिल्कुल।
तो वो तो और ही हमने अपना ही नुकसान किया,
नुकसान कर लिया।
इससे तो अच्छा था कि हम उनको समझते, थोड़ा सावधानी दे, समझाएं, आगे के लिए ध्यान रखना। थोड़ा हम भी तो परफेक्ट नहीं है, हमारे से भी तो कई भूले होती है, तो हमें उनको एडाप्ट करना है कि भाई यही है जिनसे मुझे काम करना है, तो मुझे उनको समझना है, अपडेट करना है और मिलके काम करना है।
तो अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारा वर्कर लेवल है उनकी जब डिमांड्स मीट नहीं होती है तो वो स्ट्राइक्स कर देते हैं, और दोनों में खींचातान शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, ऐसे में पूरी इंडस्ट्री में हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं रहता, बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है,
और कई बार तो तालाबंदी हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, पूरा ब्रेक हो जाता है। तो मैनेजमेंट और यूनियन के बीच कई बार ये प्रश्न होते हैं, लेकिन अगर हम पहले से ही अपने लेबर्स को वो नॉर्म्स बता दें, हमारा अच्छा व्यवहार रहेगा, तो वो हमें अंडरस्टैंड करेंगे। मान लो उसमें कई लीडर क्वालिटी ऐसे होते भी हैं, पर अगर हमने उनके साथ भी समय पर अच्छा व्यवहार किया होगा तो तो वो हमें भी हमारे उपकार के उसमें रहेंगे और हमारे साथ अच्छा काम करेंगे
जी।
तो ये जो मैनेजमेंट एंड यूनियन के जो प्रॉब्लम्स है उनको काफी हद तक हम दूर कर सकते हैं।
जैसे अभी हम रिलेशनशिप्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एंड रिलेशनशिप है या फिर एंड यूजर है वो तो क्लाइंट्स है, कस्टमर है, और कहीं ना कहीं ये होता है कि कस्टमर्स को अगर वो चीज नहीं मिल पा रही है, जैसे वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका कस्टमर एंड जो हमारा जो बिजनेस वाले लोग हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं टूटने लगता है। तो अब ऐसे में कैसा रिटेन रखें, क्योंकि आफ्टर ऑल जब कस्टमर्स ही लेने वाले नहीं होंगे तो मेरा बिजनेस क्या चलेगा।
इसलिए आजकल लक्ष्य भी रखते हैं कंपनी वाले, बिजनेस वाले, कि हमें जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको अच्छे से अच्छी सर्विस देनी है, क्योंकि एक्चुअली वो हमारे कमाई करके देने वाले सच्चे सोर्सेस तो वो ही है। हम देते हैं नहीं, पर हम उनसे कमाते भी हैं। तो हमारा अच्छा मिलनसार स्वभाव हो, हमारी वाणी अच्छी हो, हमारी भावनाएं अच्छी हो, और अगर हम उनका फेथ विन कर लेते हैं कि भाई ये हमें धोखा नहीं देंगे, मिलावट बनावट नहीं होंगी, एक विश्वास जब क्वालिटी सर्विस के द्वारा आप गेन करते हैं तो लोग ढूंढते हुए आएंगे कि भाई फलानी चीज आप इस दुकान में जाइए, बच्चे को भी भेज देंगे तो भी धोखा नहीं मिलेगा। और दूसरा, अब हमें समझना चाहिए कि हम एक एज ऑफ इंफॉर्मेशन से पास हो रहे हैं। आज का ग्राहक भी जागृत है, वो भी इंटरनेट पर सारी चीजों के दाम देख करके फिर वो आता है।
बिल्कुल।
तो हम चाहे हमारे कस्टमर हैं, उनको हम बुद्धू नहीं समझ सकते हैं, वो भी आज जागे हुए हैं, और इसलिए थोड़ा एक जीवन में नीति और सिद्धांत से चलने से अल्टीमेट हमें खुद को ही फायदा होता है।
बिल्कुल। और जैसे कि हमने एंड यूजर की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि जैसे जैसे टारगेट्स कुछ होते हैं इंडस्ट्री के, और जैसे जैसे वो डेट आ जाती है, डेडलाइंस आने लगती है, तो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब ऐसे में क्या करें?
तो थोड़ा आयोजन नियोजन जरूरी है, वेल प्लानिंग जरूरी है। क्यों हमारे बड़े लोग हमें कहते रहे हैं कि कल का काम आज करें, आज का काम अब, क्योंकि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे करके जो हमारा कार्य है उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, और फिर एक साथ करने बैठते हैं तो हम खुद ही टेंस हो जाते हैं और फिर कहेंगे अरे मुझे करके देना है, बड़ा टेंशन हो रहा है। नहीं, परंतु आप अपना आयोजन करिए व्यवस्थित रूप से कि रोज का रोज कारोबार करते जाइए करते जाइए, अपने आप लास्ट स्टैंड पर अपना काम पूरा कर ही सके।
लेकिन कई बार ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं जो कि जिसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। सपोज कोई बीमार हो गया है या कोई ऐसे वर्कर्स हैं जो इतने ट्रेंड नहीं है, और मेरा डेडलाइंस पास आता जा रहा है, और मेरे को अब ये डर लगे जा रहा है कि मेरा जो वर्कर लेवल है वो इतना ट्रेंड भी नहीं है, कोई छुट्टी पर चला गया, कोई बीमार हो गया, अब मैं वो इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं तो कैसे करूँ।
अब काम तो इन्हीं लोगों से हमें करना है, और जितने हैं उतनों के साथ ही करना है। जब करना ही है तो फिर टेंस क्या होना है
जी।
सिर्फ हमें उसकी व्यवस्था को विचार करना है और कैसे हम कम समय में अच्छा काम कर सके। कई बार काम थोड़ा होता है पर मेंटल रिएक्शन ज्यादा होने के कारण हम टेंस ज्यादा होते हैं, अरे अभी भी ये करना है, अरे अभी भी ये करना है। काम छोटा सा होता है, करने में कोई टाइम भी नहीं लगना है, पर एक मेंटली हम पहले से ही टेंस हो जाते हैं, तो इसलिए वो हमें भारी लगता है
जी।
और देखो, अति काम के, ज्यादा ओवर वर्क करने के दिन या प्रसंग तो सारे साल में कितने आते हैं? बहुत कम आते हैं। वही तो मौका है जब हमें अपनी एफिशिएंसी का परिचय देना है, वही तो मौका है जब हमें और शांति धीरज से लगे रहना है।
बिल्कुल।
और उसी समय हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इतना ओवर वर्क, इतना ओवर वर्क। बाकी तो हम सारा साल रिलैक्स ही तो चलते हैं, एक रूटीन में ही तो चलते हैं।
मतलब एक तरह से मेरा एग्जामिनेशन वाला हिस्सा वही है
बस,
जो स्टूडेंट लाइफ में कहते हैं।
मैंने तो ये देखा है कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति शक्तिशाली है, सेंसिबल है और पॉजिटिव है, तो हम इसको चैलेंज के रूप में देंगे, टेंशन नहीं लेंगे कि नहीं ये हमारी चैलेंज है और यही मौका है हमें अपनी एफिशिएंसी दिखाने का।
बिल्कुल।
और जब आप अच्छा कार्य करके दिखाएंगे वही आपके प्रोग्रेस का भी कारण बनता है फिर।
बट जैसे हम हर चीज को, हर व्यक्ति को, मैनेजमेंट को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम वर्कर्स को, लेबर्स को, सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतना हम पैसा भी खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं निकल पाती है जो चाहिए, तो ट्रेनिंग में को क्या चीज मिसिंग है जो देनी चाहिए?
वही बोला ना कि एक जो वर्कर काम करने आता है उनके अपने लाइफ का पर्पस जो है वो कंपनी के पर्पस से मैच नहीं हो रहा है। अगर दोनों के बीच में एक कॉमन कॉर्ड ये है कि भाई दोनों का कल्याण हो, अगर उन चीजों पर सोचा जाए और व्यक्ति का जो उनका अपना बीइंग साइड है, उनका जो स्पिरिचुअल साइड है उसको डेवलप करने के लिए अगर हम थोड़ा भी कुछ कार्यक्रम रखते हैं, जैसे फिजिकल साइड डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, मेंटल साइड डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, और उनका सोशल साइड के भी, मनुष्य आखिर एक सामाजिक प्राणी है तो एक फैमिली फीलिंग आनी चाहिए, उसके लिए वो लोग गेट टुगेदर करते हैं, क्वालिटी सर्कल्स बनाते हैं, पर जो हमारा स्पिरिचुअल साइड है, बीइंग साइड है, जिससे हमारे वैल्यूज, पावर्स, हमारी बिलीफ्स कनेक्टेड है, अगर उस इनर साइड का डेवलपमेंट हम नहीं करते हैं तो ये वैल्यूज एंड पावर्स नहीं आते हैं, जिसके कारण हम जो हमारे टारगेट है या जो ओवर वर्क के समय जो हमारे अंदर शक्ति चाहिए वो नहीं रहती, उसका कारण ये है।
अक्सर करके जो बिजनेस इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए या फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड उनका जो माइंड होता है वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट करने लग जाते हैं। उनको बस ये है कि चाहे धुआं निकल रहा है, चाहे मैं पानी को पॉल्यूट कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे मेरा मुनाफा चाहिए।
मैंने वो क्या बताता है कि वो इतने स्व केंद्री हो गए हैं और इतने स्वार्थ में चले गए हैं कि वो दूसरों का हित नहीं देख रहे हैं कि आज मैं ये पॉल्यूशन बाहर फेंक रहा हूँ, चाहे धुएं के रूप में, पानी के रूप में या कोई मटेरियल के रूप में, दूसरों के लाइफ पर वो क्या असर करेगा, और अल्टीमेट आपसे जो भी अफेक्टेड लोग हैं और जो दुख पाएंगे, बद्दुआ तो आप ही ले रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
और एक समय आएगा जब वो पूरा रिएक्शन एक ऐसा गुब्बारे की तरह आपके सामने आएगा जब आप सर्वाइव ही नहीं हो पाएंगे। तो इतना लोभ और लालच रखना और इतना स्वार्थी बन जाना, आखिर संसार में जीना है तो हम अकेले थोड़ी जिएंगे, हमें सबके साथ जीना है, और सब सुखी नहीं होंगे और मैं ही केवल धन साधन और सुविधाओं से भरपूर होगा तो मुझे भी तो सुख का अनुभव नहीं होगा।
बट जैसे खुद मुझसे भी किसी ने एक बार पूछा, उन्होंने ये कहा कि मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊं, अगर मैं बिजनेस नहीं चलाऊंगा तो मैं अपनी आजीविका कैसे कमाऊंगा, मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगा, मेरे को करना पड़ता है। वो मतलब उसका अंदर से मन गवाही नहीं दे रहा लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मुझे करना पड़ता है, आई एम फोर्स्ड।
देखो, जब खुद का ही कॉन्शियस बाइट कर रहा है और उसके विपरीत आप कर रहे हैं तो आप टेंस होंगे ही। वो टेंशन का कारण हमारी अनैतिकता ही है, और जब हम खुद समझ रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं। हम अपने परिवार को भी तो समझा सकते हैं। आज एक सामान्य स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति स्वयं अगर ब्रिलियंट है तो वो वहां से भी नंबर विन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत पैसे और सुविधा वाली स्कूल में बच्चे को
अच्छा
लगाने से, नहीं। व्यक्ति की खुद की पढ़ने की अवेयरनेस है, लगन है, तो साधारण गरीब बच्चे भी कितने आगे आते हैं, तो उसके लिए अनैतिकता करने की कोई जरूरत नहीं है।
जी,
जो जीवन है और जो आपकी वास्तविकता है उसका भी आनंद आप नहीं ले सकते
जी।
इसलिए पहले से अपने वैल्यूज को आप फाइनल करें कि मुझे ये लाखों कमाने हैं, करोड़ों कमाना है, उसके लिए मुझे ये बिजनेस करना है, लेकिन ये बिजनेस मुझे इन वैल्यूज के साथ करना है।
बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो लोग कहते हैं कि क्या करें, जमाना ही ऐसा, हमें ये सब करना पड़ता है, वो भी भेड़ चाल में कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं कि जब वो कर रहा है तो मैं अगर कर लूंगा तो कोई बात नहीं। वो शायद जैसे कि आपने बताया भी कि कर्मों की गति जो है अपने वो जान समझ नहीं पाता है और उसको खुद उलझ जाता है उसमें,
और सब करते हैं इसलिए करना पड़ता है, जमाना ऐसा है इसलिए करना पड़ता है, लोग ऐसे हैं इसलिए हम ऐसा करते। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके जीवन का लोगस ऑफ कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में है। बाकी सब बातों में आप कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि मेरा परिवार पर कंट्रोल हो, बच्चों पर कंट्रोल हो, बीबी पर कंट्रोल हो, मेरे बिजनेस पर कंट्रोल हो, मेरे नौकर पर कंट्रोल हो, लेकिन मेरा खुद का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। परंतु जब हम अपनी आत्मा सेल्फ को एम्पावर करते हैं, स्पिरिचुअली एम्पावर होते हैं, तो चाहे दुनिया कुछ भी करती हो लेकिन हमारे अंदर वो अवेयरनेस रहती है और हमारे अंदर वो पावर रहता है कि हम मिसगाइड नहीं हो जाते हैं या नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आ जाते हैं।
जी
यही तो भारत है, इसी ही देश के लोग ऐसे थे जिसके हम इतिहास पढ़ते हैं, और अभी भी हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन को नीति और सिद्धांत से चलाते। मैंने ऐसी कई कंपनीज देखी जिन्होंने कहा हम 100% टैक्स भर देते,
जी
क्योंकि हम टैक्स तो कस्टमर से कमाते ही है ना,
जी, जी,
फिर हम गवर्नमेंट को क्यों नहीं देते?
हाँ।
आप तो ऑलरेडी कस्टमर से ले ही रहे हैं ना,
बिल्कुल,
फिर आपको देने में क्या है? पर उसमें भी हमें जो लोभ का वृत्ति है तो हम नीति से धंधा नहीं करते हैं और उल्टा सीधा इतना करना पड़ता है जिसके कारण कांस्टेंट भय चिंता बनी रहती है, उसको सोते जागते नींद में स्वप्न में वो कस्टम वाले ही दिखते हैं, भय ही और चिंता ही रहती है।
बिजनेस वाले जो लोग हैं पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन दिखाते हैं कि हमारा एनुअल इनकम इतना है तो हम टैक्स नहीं भर सकते हैं, ऐसी उनकी मानसिकता है, तो ये कहाँ तक ठीक है?
मैंने ये अपने आप में कितना गरीब है
जी,
कितना कमाने के बाद भी खुद को धनवान नहीं कह रहा है, नहीं समझ रहा है, और अपने मुख से ही अपने लिए ऐसा बोलना ये उचित है क्या? और इस प्रकार के लोभ का तो कोई अंत ही नहीं है, और जो गलत कर्म आप करेंगे उसके रिजल्ट्स आज नहीं कल खुद को ही भोगने पड़ते हैं
जी।
और कहा जाता है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन भी गलत मार्ग पर ही जाता है। हम ज्यादा कमाएंगे और हमारा सेल्फ पर कंट्रोल नहीं है तो हमारी फिजूल खर्ची बढ़ती है, व्यसन बढ़ते हैं, गलत रस्म रिवाज हमारे बढ़ते हैं, बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं, अल्टीमेट उसका फल हमें आता ही है सामने।
आपने बहुत ही अच्छी बात अभी कही, आजकल हम ये माहौल देखते हैं, वो सोचते हैं कि उनको हम हाई प्रोफाइल पार्टीज नहीं अरेंज करके देंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो वहीं का वहीं रह जाएगा।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे बिजनेस में नैतिकता है, ऑनेस्टी है, क्वालिटी सर्विस है, लोग भी समझते हैं कि हमें इनसे बिजनेस करना चाहिए। मैं इस विश्वविद्यालय के जो फाउंडर मीडियम प्रजापिता ब्रह्मा की बात करूं, वो खुद एक ज्वेलर थे अपने जमाने के, एक प्रसिद्ध और नामी ग्रामी, लेकिन उनके जीवन की ये धारणाएं थी, उनका राजाओं महाराजाओं से संबंध था, अंग्रेजों के समय वाइसरॉय जैसे बड़े लोगों से संबंध था, लेकिन उनकी पार्टी में कभी भी वो नॉनवेज या इस प्रकार के जो बिवरेजेस है, अल्कोहल है, वो कभी भी सर्व नहीं करते थे। भले वो लोग कहते भी थे कि लेखराज बाबू आपकी पार्टी फीकी लगती है, लेकिन उनका बिजनेस, उनकी धारणाएं अच्छी थी, उनका कैरेक्टर अच्छा था, उनके वैल्यूज नॉर्म्स अच्छे थे, तो वो एक प्रसिद्ध और सफल ज्वेलर बने ही, और आज भी ऐसे कई लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें गलत तरीके से कुछ अच्छा कमाना नहीं। गांधी जी सदा कहते थे कि हमारे मींस एंड वेज दोनों शुद्ध होने चाहिए, हमारे साधन की भी शुद्धि हो, जिन साधनों से हम कमाते हैं और जिन तरीकों से हम कमाते हैं, दोनों की शुद्धि ही शांति हमें देती है और हमारी समृद्धि टिकती है।
ये तो आपने इतनी आज ऐसी बातें बताई हैं जो शायद आदमी यदि अपने मन पटल पर अगर आज से उतारना चालू कर दे तो उसका टोटल लाइफ चेंज हो जाएगा। टोटल लाइफ भी और जो बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज वो अडॉप्ट करता आ रहा था वो भी चेंज कर देगा। इतनी अच्छी डिस्कशन के लिए, इतनी बखूबी डिस्कशन के लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका थैंक्स करती हूँ और अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आज के डिस्कशन यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो वो सब चीजें, वो सब नजारे बदल जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कर्मों की गति, लॉ ऑफ कर्मा, इससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कई टॉपिक्स को लेकर, कई विषयों को लेकर अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।